नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं।
जी
हमारे पास पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन है।
हाँ।
शीर्षक है शक्ति भंडार के साथ जुड़े।
हाँ।
और सुना है इसकी शुरुआत उन्होंने गायत्री मंत्र के उच्चारण से की थी।
जी हाँ, बिल्कुल। और इस उद्बोधन का जो मूल भाव है वो ये कि हम इंसानों की जो अपनी शक्ति है, अपनी क्षमताएं हैं, वो सीमित है।
अच्छा।
हाँ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, यूं समझिए दाल रोटी के लिए शायद काफी हो, लेकिन अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है, कुछ असाधारण सफलता चाहिए या समृद्धि चाहिए, तो फिर एक असीम शक्ति के स्रोत से जुड़ना ही होगा।
और गुरुदेव के अनुसार वो स्रोत वो भगवान है।
हाँ, वो परम सत्ता, वो परमात्मा, वही है वो स्रोत।
ये बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि हम तो अक्सर अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ पर सारा ध्यान देते हैं।
बिल्कुल।
गुरुदेव ने शायद एक उदाहरण भी दिया इसका।
जी।
जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी और नेहरू जी का।
हाँ हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव समझाते हैं कि जैसे शास्त्री जी की जो उन्नति हुई उसमें सिर्फ उनका अपना पुरुषार्थ नहीं था।
अच्छा।
नेहरू जैसे एक स्थापित, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व से, एक स्रोत से उनका जुड़ना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये सिर्फ दुनियावी रिश्तों की बात नहीं है, गुरुदेव इसी सिद्धांत को फिर आध्यात्मिक स्तर पे ले जाते हैं।
अच्छा, तो आध्यात्मिक स्तर पर
या
मतलब भगवान से जुड़ने पर हमारी क्षमताएं क्या वाकई बढ़ जाती हैं?
निश्चित रूप से। पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस परम शक्ति से, परमात्मा से जुड़ जाता है ना, तो उसकी सीमाएं टूट जाती हैं।
सीमाएं टूट जाती
हैं। हाँ, वो फिर साधारण नहीं रहता। आप देखिए ना, इतिहास में, पुराणों में कितने उदाहरण हैं। सुदामा को देख लीजिए, सुग्रीव हैं, नरसिंह मेहता हैं।
हाँ हाँ, इनके जीवन में तो बड़े चमत्कार हुए,
अब बनाया।
पर सवाल तो फिर वही है, सबसे बड़ा सवाल शायद, कि ये जुड़ाव हो कैसे। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई खूब पूजा पाठ कर लो, आरती कर लो, माला जप लो, या भगवान की मीठी मीठी स्तुतियां गा लो, चापलूसी कर लो थोड़ी, तो शायद काम बन जाए।
और यहीं पर गुरुदेव बहुत साफ करते हैं इस बात को। वो कहते हैं भगवान इन बाहरी चीजों से, कर्म कांडों से या चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित नहीं होते।
अच्छा
जी। उन्हें ये दिखावा नहीं चाहिए। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं व्यक्ति की नीयत, उसका नजरिया कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके अंदर के विचार, उसकी भावनाएं, वो कितनी शुद्ध है। अगर अंदर मैल भरा है तो बाहर का आडंबर किसी काम का नहीं।
तो अगर पूजा पाठ या चापलूसी रास्ता नहीं है, तो फिर सही तरीका क्या है?
बिल्कुल।
गुरुदेव क्या बताते हैं इस बारे में?
एक शब्द में कहें तो समर्पण।
समर्पण।
हाँ, शरणागति, अपने आप को पूरी तरह सौंप देना, विलय कर देना, विसर्जन कर देना,
सौंप देना।
हाँ, वो एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, जब वो आग में जाती है तो वो सिर्फ जलती नहीं है, वो अपनी पहचान खो देती है और खुद आग बन जाती है।
वाह, खुद आग बन जाती है।
हाँ, उसे फिर अग्नि की शक्ति मिल जाती है, अग्नि के गुण मिल जाते हैं। यही है समर्पण।
ये तो बहुत शक्तिशाली बात है, मतलब अपनी पहचान मिटाकर उस बड़ी शक्ति का ही हिस्सा बन जाना।
बिल्कुल। और भी कई उदाहरण है, जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद, जब वो समुद्र में मिलती है तो क्या होता है?
वो समुद्री बन जाती है।
हाँ, वो खुद समुद्र जितनी विराट हो जाती है। गंदा नाला जब गंगा जी में मिलता है तो वो गंगा जल कहलाता है।
सही बात है।
लोहा है, जब पारस पत्थर से छूता है तो सोना बन जाता है। एक कमजोर सी बेल होती है, वो पेड़ का सहारा लेके कितनी ऊंची चढ़ जाती है,
आसमान छूने लगती है।
ये सब समर्पण के ही तो रूप है। हमें अपनी मर्जी चलाने के बजाय भगवान की मर्जी में, उनके अनुशासन में रहना सीखना होगा।
इसी को शायद विलय या विसर्जन भी कहते हैं, है ना? जैसे वो कठपुतली का उदाहरण भी शायद आता है।
हाँ हाँ, कठपुतली का अपना कोई वजूद नहीं, उसका नाचना, उसका कमाल, वो तो बाजीगर के हाथ में है।
बिल्कुल।
पर वो नाच तभी सकती है जब वो खुद को पूरी तरह बाजीगर की उंगलियों पर, उसके धागों पर छोड़ दे।
है कि नहीं?
हाँ, सही कहा।
तो क्या हमें भी अपने जीवन की डोर पूरी तरह ऐसे ही सौंपनी होगी?
हाँ, भाव तो यही है। और इसमें एक और गहरा रहस्य है। गुरुदेव बताते हैं कि भगवान पहले हमसे कुछ मांगते हैं।
मांगते हैं?
हाँ, वो पहले हमारी पात्रता देखते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं भी या नहीं, समर्पण के लिए तैयार हैं।
अच्छा।
जैसे सुदामा से पहले क्या मांगा? थोड़े से चावल ही तो मांगे। शबरी से जूठे बेर स्वीकार किए, गोपियों से माखन लिया, कर्ण और बलि राजा, उनसे भी तो पहले दान मांगा गया था।
अच्छा, तो पहले देना पड़ता है, मतलब प्यार या भक्ति का मतलब ही देना है, जैसे वो लैला मजनू वाला किस्सा भी शायद गुरुदेव बताते हैं।
जी जी, लैला ने मजनू के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए क्या मांगा, उसका खून मांगा था।
हाँ,
और जब मजनू ने बिना एक पल सोचे तुरंत दे दिया, तब लैला ने उसे अपना माना। तो यहाँ पूज्य गुरुदेव पात्रता का सिद्धांत समझा रहे हैं। प्रेम हो या भक्ति, उसका मतलब ही है देना, अपना सब कुछ दे देना, अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपना सब कुछ उस परम सत्ता को सौंप देना,
यानी अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देना,
अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ जाना।
बिल्कुल सही समझे।
जैसे एक बीज होता है ना, जब तक वो साबुत है तब तक कुछ नहीं।
हाँ।
लेकिन जब वो मिट्टी में गल जाता है, अपना रूप मिटा देता है, तभी तो उसमें से अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, फसल आती है।
सही है।
समर्पण का अर्थ यही है, खुद को मिटाकर उस विराट देश का हिस्सा बन जाना।
हमें खरीदने को तैयार हैं, बस हमें अपने आप को उनके हाथों बेचना होगा।
हाँ,
जैसे एक स्त्री खुद को पति को समर्पित करके उसे अपना बना लेती है।
ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना गहरा भी है।
बहुत गहरा।
तो इस पूरी चर्चा का सार निचोड़ यही है कि ईश्वर से, उस अनंत शक्ति के भंडार से जुड़ने का रास्ता बाहरी कर्मकांड या चापलूसी नहीं है।
नहीं है,
बल्कि वो है आंतरिक परिवर्तन और पूर्ण समर्पण, अपनी नियत को, अपने चरित्र को, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना और अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा के साथ मिला देना। यही असली जुड़ाव है।
और जब ये जुड़ाव सध जाता है, फिर तो व्यक्ति की कोई सीमा नहीं रहती, वो अनंत संभावनाओं से जुड़ जाता है ना।
बिल्कुल। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। पूज्य गुरुदेव का ही प्रश्न है एक तरह से, कि अपने अहंकार को, अपनी निजी इच्छाओं को, अपने पूरे जीवन को किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित कर देने का, इसका वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। और अगर ऐसा समर्पण हम कर पाए तो ये हमारी जीवन की चुनौतियों को देखने का नजरिया, हमारी आकांक्षाओं को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है।
ये वाकई एक गहरा चिंतन का विषय है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी अपने उद्बोधन का समापन शांति पाठ से किया था।
जी।
ओम शांति।